हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग की जिद के आगे ध्रुव के लिए अब कुछ भी कहना व्यर्थ था। वैसे भी याशी उनके पास थी और उनकी बहस से परेशान हो गई थी। युग ने फिलहाल ध्रुव को उसके हाल पर छोड़ दिया। इस बीच ध्रुव को पता चला कि युग ने एक आदमी को किडनैप किया है जो याशी पर नजर रख रहा था। उसे दक्ष मल्होत्रा ने भेजा था। दक्ष का नाम पता चलते ही युग ने बड़ी आसानी से उसे मारकर उसकी जान ले ली। उनकी बातचीत में युग ने ध्रुव को ये समझाने की कोशिश की कि कुछ कामों में ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप आसानी से हो जाते हैं। उस आदमी को मारने के बाद युग टॉर्चर रूम से चला गया, जबकि ध्रुव वहीं खड़ा उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था। ध्रुव को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला क्योंकि सारा का कॉल आ गया। ध्रुव ने कॉल उठाया और नाराजगी जताते हुए कहा, मासी, आपने मुझे एक बार बताया तक नहीं कि आप मॉम डैड से बात करने वाली हैं। मैंने उन्हें अभी तक शादी और सगाई के बारे में कुछ नहीं बताया था और आपसे पता चलने पर वे मुझसे बहुत नाराज हैं। ये तो तुम्हारी गलती है ना? मुझे लगा कि सबसे पहले तुमने उन दोनों से ही बात की थी। वैसे भी तुम युग से बात किए बिना कुछ करते नहीं हो। खैर, इसे छोड़ो, नाराजगी जताने का वक्त नहीं है। तुम लंदन में हो तो मेरा एक काम करके आओ, सारा ने जवाब दिया। उसने ध्रुव को किसी काम के चलते कॉल किया था। क्या आप सच में मुझे लंदन में अंडरवर्ल्ड के काम के लिए भेज रही हैं? डैड ने मुझे इंडिया के अलावा कहीं पर भी एक्टिव रहने से साफ मना किया है। ऑलरेडी वे मुझसे नाराज हैं, ध्रुव ने गहरी सांस लेकर पूछा। वो कुछ भी ऐसा वैसा करके युग को और नाराज नहीं करना चाहता था। हाँ, पता है, तुम्हारे माफिया किंग बनने से पहले युग नहीं चाहता कि तुम किसी की भी नजरों में आओ, तो खुद को छिपा लेना, काम बहुत जरूरी है, सारा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, जल्दी बताइए, शाम को मुझे इंडिया के लिए भी निकलना है, ध्रुव बोला तो सारा उसे काम के बारे में समझाने लगी। माफिया में आजकल एक नया नाम सुना जा रहा है, लोग उसे सीक्रेट किंग कह रहे हैं। जाकर उसके बारे में पता लगाओ, वो फिलहाल लंदन में ही है और अपने पैर वहीं पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने लिए लंदन इसलिए चुना है क्योंकि वो युग की खास और पसंदीदा जगह है। उसके अलावा कोई उतना पावरफुल वहां नहीं है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो जो सीक्रेट किंग के तौर पर माफिया का किंग बनने की कोशिश कर रहा है, सारा ने ध्रुव को सब समझा दिया था। सीक्रेट किंग, अब तो इसके बारे में जानना बनता है, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। इतना कहकर ध्रुव ने कॉल काट दिया। सारा ने जो काम दिया था वो दिन के उजाले में करना पॉसिबल नहीं था, तो ध्रुव ने फिलहाल इंडिया जाने के बजाय सारा के काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। वहीं दूसरी तरफ सारा ने जब ध्रुव से बात की थी तब उसने पूरा ख्याल रखा था कि कोई उसकी बात ना सुन ले। वैसे भी हर कोई राणा मेंशन में ध्रुव की सगाई की रस्म की तैयारी में लगा हुआ था। ध्रुव से बात करने के बाद सारा ने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो वो नीचे चली गई। मेहर वहीं एक मिलर के पीछे छुपकर उसकी बातें सुन रही थी। उसके जाते ही वो बाहर आई। इन्हें सीक्रेट किंग के बारे में कैसे पता चला? ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसका नाम निकल कर आया है तो जल्दी इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो तीन पड़ाव हमारे पास नहीं है और ना ही मैं उन तीन पड़ावों का पासवर्ड हूँ। मैं किसी तरह की माफिया प्रिंसेस नहीं हूँ, मेहर ने घबराहट के साथ कहा। राणा फैमिली से सच छुपाने के लिए ही प्रतीक रायचंद चाहता था कि मेहर और ध्रुव की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मेहर जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने तुरंत प्रतीक को कॉल किया। वो सब ठीक चल रहा है ना बेबी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? प्रतीक ने कॉल उठाते ही पूछा। अब तक तो सब ठीक चल रहा है डैड, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकती मैं। अभी सारा सिंघानिया को किसी से कॉल पर बात करते सुना था, वो सीक्रेट किंग का नाम ले रही थी और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ भी करके हमें इस शादी के होने तक सच छुपाना होगा, मेहर ने हड़बड़ाते हुए प्रतीक को सब कुछ बता दिया था। उसकी बात सुनकर प्रतीक भी परेशान हो गया था। उसने नामे सिर हिलाया और घबराहट के साथ कहा, ये कभी नहीं होना चाहिए मेहर, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ध्रुव और तुम्हारी सगाई के बाद मैंने मल्होत्रा फैमिली से सीधी सीधी दुश्मनी मोल ले ली है, सिर्फ और सिर्फ योग राणा के दम पर। अगर उनके साथ नहीं रहा तो दक्ष और सम्राट ना जाने कैसे हमसे बदला लेंगे। सबके सामने ये राज खुल जाएगा कि असली किंग कोई और है। झूठ बोलने के बदले योग राणा भी ना जाने हमारे साथ क्या करेगा। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ डैड, प्लीज इस मामले में कुछ कीजिए, मेहर ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। मेहर और प्रतीक दोनों ही ये शादी टूटना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब तक तो बिजनेस वर्ल्ड और माफिया तक में ये खबर फैल चुकी थी कि युग राणा के बेटे और प्रतीक रायचंद की बेटी की शादी होने वाली है। ठीक है, तुम सब पर नजर रखना और संभालने की कोशिश करना, मैं युग राणा से बात करता हूँ। तुम दोनों शादी तक करने जा रहे हो लेकिन युग राणा ने मुझे एक बार कॉल पर बात तक नहीं की, प्रतीक ने जवाब दिया। मेहर ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल काट दिया। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए सबके साथ नीचे चली गई, जहां बाकी लोग शादी और सगाई की एक साथ तैयारी करने में लगे हुए थे। वहीं प्रतीक ने मेहर से बात करने के बाद तुरंत युग को कॉल किया। युग इस वक्त याशी से बात करने जा रहा था, उसने प्रतीक का कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। युग ने अपना मोबाइल साइलेंट किया और सीधा याशी के कमरे में पहुंचा। याशी और कृषा साथ में कमरे में थी। कृषा उसका मूड सही करने की कोशिश कर रही थी। अचानक युग ने कमरे में दस्तक दी तो याशी ने कृषा का हाथ पकड़ लिया। उसकी नजरें नीचे थी। युग ने गहरी सांस ली और याशी के पास आकर उसे अपनी गोद में लिया। तो मेरी यश को मुझसे डर लग रहा है? कोई खास बात नहीं, कृष को भी लगता है और तुम्हारे भाई को भी। शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, युग ने उसे मनाने के लिए कहा। याशी ने तुरंत युग की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, लेकिन ये लोग तो बड़े हैं, फिर आपसे क्यों डरते हैं? मैं तो फिर भी छोटी बच्ची हूँ। आप भाई से नाराज हो गए क्या? आप मुझ पर भी गुस्सा हो क्या? आप गुस्सा आने पर ऐसे ही चिल्लाते हो, मुझ पर भी चिल्लाओगे? याशी ने युग के सामने सवालों की झड़ी लगा दी थी। हालांकि कृषा भी युग से गुस्सा थी, लेकिन जिस तरह से याशी अपनी मासूम आवाज में धीरे सवाल पूछ रही थी, कृषा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो भी उसे इस तरह जब बहुत सारे सवाल पूछती थी तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाया करता था। युग ने कृषा के चेहरे की स्माइल को नोटिस कर लिया था। उसने सिर हिलाया और फिर याशी के गाल पर हल्का सा किस करके कहा, नहीं, इन लोगों की तरह तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ये दोनों इतने बड़े होकर भी इमेच्योर हैं, जबकि मेरी यश छोटी सी होकर भी कितनी मेच्योरिटी से बात करती है। बड़े गुस्सा हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते हैं। आगे से मुझसे डरना मत। कोई और मुझसे डरता है तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे डर लगने लगता है। मुझे आपके गुस्से से डर जरूर लगता है डैड, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा, याशी ने युग की आंखों में देखकर इंटेंस वॉइस में कहा। कृषा ने गहरी सांस ली और फिर उठते हुए वहां से जाने लगी। वो तेज आवाज में जाते हुए बोली, हाँ, यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, फिर मैं क्यों हूँ यहाँ पर?
कृषा के नाराज होने पर याशी ने युग के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लगता है हमने मॉम को नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। इसके इस 10 मिनट के गुस्से को शांत करने का मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, युग ने आई विंक करके कहा, जिस पर याशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। युग कृषा के पीछे जाने के बजाय वहीं याशी के साथ बैठकर उसका मूड सही करने की कोशिश करने लगा। वहीं कृषा इस वक्त उनकी पैकिंग करने में बिजी थी। ध्रुव ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो आज के बजाय कल लंदन के लिए निकलेंगे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। ध्रुव इस वक्त एक ऐसी जगह पर था जहां अगर वो युग के साथ या अपनी असली पहचान के साथ जाता तो उसके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस वक्त वो एक अनजान आदमी बनकर वहां गया था। वो एक माफिया मीटिंग थी। ध्रुव ने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था, सिर पर कैप और मुंह पर ब्लैक मास्क और आंखों पर गॉगल्स चढ़ाने के बाद वो उस मीटिंग में काफी नॉर्मली दाखिल हुआ। उसे मीटिंग में अंदर जाने से किसी ने नहीं रोका क्योंकि उसके पास एक खास कार्ड था जो कि उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जरूरी होता था। किसी ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की। मीटिंग में मौजूद सभी लोग इसी तरह खुद को छुपा कर आए थे। उसके अलावा वहां 4 लोग और मौजूद थे जो सीक्रेट किंग के बारे में जानते थे। ध्रुव को वहां देखकर एक आदमी ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन हर बार तो मीटिंग में हम 4 लोग ही होते हैं, ये 5वां कहां से आ गया? वो रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, हो सकता है इस वजह से उन्होंने टीम में मेंबर्स बढ़ाने का सोचा हो, दूसरी आवाज आई। कपड़ों से वो बिल्कुल किसी लड़के की तरह लग रही थी, लेकिन वो एक लड़की थी जो इटालियन बोल रही थी। वहां अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, मतलब वो अलग अलग देशों से थे। ध्रुव को लगा ये सीक्रेट किंग जो भी था वो हर एक कंट्री के माफिया पर पकड़ बनाने के लिए वहां की जरूरी माफिया पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट मीटिंग, तीसरे ने ब्रिटिश एक्सेंट पे कहा। सब एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ सकते थे। उनमें एक इंडियन भी था जो कि शायद सीक्रेट किंग का मैनेजर और खास आदमी था। उसने आगे आकर कहा, लोगों को किंग के बारे में पता चलने लगा है। वो नहीं चाहते कि उनकी शख्सियत कभी किसी के सामने आए। उन्हें माफिया किंग बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन साथ ही वो चाहते हैं कि जो उनका है वो किसी के पास न जाए। किंग को कहें कि वो बेफिक्र रहें, उनका राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा, इटालियन बोलने वाली लड़की ने कहा। ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से रशियन बोलने वाले आदमी ने उससे कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। कौन सी कंट्री को संभाल रहे हो तुम? इंडिया, ध्रुव ने अपना टोन बदलकर जवाब दिया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने इंडिया में किसी और को अपॉइंट किया। वैसे भी इंडिया काफी बड़ा है और हम 2-3 लोगों के लिए वो संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, खासकर उस पॉइंट पर जहां लोगों को ये लगता है उनकी जगह सीक्रेट किंग कोई और है, इंडियन मैनेजर ने कहा। वो क्लियरली किसी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसका इशारा प्रतीक रायचंद की तरफ था जहां सबको यही लगता था कि वो 3 पड़ावों का मालिक है। आपस में डिस्कशन करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को उनका काम दिया और फिर वहां से जाने लगे। ध्रुव ने मीटिंग तो अटेंड कर ली थी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात समझ आई थी कि कोई सीक्रेट किंग था जो किसी भी कीमत पर अपनी पहचान बाहर नहीं आने देना चाहता था। इसका कारण क्या था ये तक रिवील नहीं हुआ था और ना ही किसी सीक्रेट किंग ने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग खत्म करके एक एक लोग वहां से जाने लगे सिवाय इंडियन मैनेजर के। ध्रुव को डाउट हुआ क्योंकि पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, लेकिन उस स्क्रीन के ऊपर कोई नहीं आया था। उन सबके जाने के बाद भी ध्रुव छुपकर उस जगह से अंदर की तरफ झांक कर देख रहा था। उनके जाते ही इंडियन मैनेजर ने उस स्क्रीन को ऑन किया और कहा, चिंता मत कीजिए, इस दुनिया में मैं इकलौता शख्स हूँ जो आपके बारे में जानता हूँ और किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों के बीच एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं, किसी को गलती से भी शक नहीं होगा। इंडियन मैनेजर ने कॉल पर बात करते हुए अपना मास्क और गॉगल्स उतार दिए थे। उसकी पीठ ध्रुव की तरफ थी, इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया और स्क्रीन पर भी उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव ने थोड़ा इधर उधर होकर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन की तरफ गई, ध्रुव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। मानो उसने जो देखा है वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या लगता है, कौन है ये सीक्रेट किंग और तीन पड़ावों का मालिक, जिसे देखकर ध्रुव का ऐसा हाल हो गया? अगले चैप्टर तक वैसे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हैं। समीक्षा में लिख दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।